ओम शांति। पुनः स्वागत है आपका बाप दादा की मदद की मीठी यादें कार्यक्रम में। पिछली बार की तरह इस बार भी बाप दादा के मदद के कुछ प्रैक्टिकल अनुभव आपके समक्ष हम लेकर के आ रहे हैं। और हमारे बीच में एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय बृजमोहन भाई साहब का, जो कि संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी सुना था, किस तरह से बाप दादा की मदद से, जो बाप दादा के डायरेक्शंस दिए हुए थे कि ब्रह्मा बाबा का या संस्था का एक पोस्टेज स्टैम्प निकले जिसमें निराकार परमात्मा की यादगार हो, वो परमात्मा की मदद से, बाबा की मदद से भाई साहब ने साकार किया। ऐसे ही कुछ अनोखी सेवाएं और कुछ अनोखी मदद के अनुभव हमारे बीच में आज पुनः शेयर करने के लिए भाई साहब पहुंच चुके हैं। ओम शांति भाई साहब।
ओम शांति
भाई साहब, आपने कुछ दिन पहले जब दादी जी का स्मृति दिवस हम मना रहे थे, तो आपने शेयर की थी एक बात कि दादी हुज्जत से, अधिकार से आपको वो सेवाएं बताती थी जो वैसे असंभव लगती थी। तो उसमें से आपने एक बात बताई थी कि जब ओम शांति भवन बन रहा था मधुबन में, तो उस समय पे 150 टन सीमेंट की ज़रूरत थी। वो थोड़ा सा हमको बताएं कि ओम शांति भवन, हम सभी वहाँ पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे 150 टन की सीमेंट की ज़रूरत जो थी वो किस बारे में हुई, तो थोड़ा सा अगर आप उस बारे में बताएं।
ऐसा है कि वास्तव में वो 150 टन नहीं था, 220 टन था।
okay.
हमारे एक भाई हैं विनोद जैन, वो उनके उनको उन्होंने ये काम दिया हुआ था, क्योंकि हम जो भी काम करने वाले थे, पब्लिक में जाने वाले थे, दुनिया में लोगों से काम करवाने, हमारी एक टीम थी। कोई काम किसी को दे दिया जाता था, कोई किसी को। तो विनोद जैन भाई को दादी, वो दिल्ली में रहते थे, उनको दादी जी ने ये काम दिया कि आप ये सीमेंट लेना है। पर चांस क्या हुआ कि विनोद जैन भाई को यूएसए में जॉब मिल गया, तो वो मुझे बोले कि भाई साहब, ये यूएसए में मुझे तो जाना, ये काम आप कर देना। इस तरह से ये मामला शुरू हुआ, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता था
जी।
उन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि वहाँ पर जाके ये होता है, तो वो तो चले गए। अब मैंने पता किया तो दिल्ली में एक रजिंद्रा प्लेस है, जिसको आपको याद होगा, आग भी लगी थी वहाँ
जी।
तो वहाँ पर सीमेंट कंट्रोलर ऑफ इंडिया का ऑफिस है, एक फ्लोर पर। मैं वहाँ गया, अब बाबा की मदद देखी और कैसे मामला बनता है। वहाँ एक भाई जो सीमेंट कंट्रोलर है वो बैठे थे और किसी से बात कर रहे थे। मैं दूसरी कुर्सी पर जाके बैठ गया। जब उनकी बात पूरी हुई तो वो बोले, कहिए क्या काम है। अब देखिए, वो कह रहे हैं आपका क्या काम है, अब हमें सीमेंट लेना है। मेरे दिमाग में पता नहीं बाबा ने कैसे डाला, मैंने पूछा आप किस शहर के रहने वाले हैं। नॉर्मली तो व्यक्ति ऐसी बात नहीं करता। तो उन्होंने कहा मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, और मैं भी अमृतसर का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान अमृतसर है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। फिर मैंने पूछा आप किस स्कूल में पढ़ते थे। आप सोच सकते हैं कि क्या कभी ऐसा पूछेगा कोई, नहीं। उसने मेरा ही स्कूल बताया, प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल था जिसमें वहाँ पढ़ते थे, PBN हाई स्कूल। अच्छा, दो बातें हो गई। अब कल मैंने आपको स्टैम्प का बताया था कि बाबा ने कैसे वो मेजर मोहिनी को जोड़ा है, कहाँ कहाँ बना, पहले वो रिजेक्ट हो। इसी प्रकार से तो ऐसे लगा कि जैसे हम पुराने वाकफ हैं। फिर मैंने उसकी क्लास पूछी, तो मेरी क्लास से एक क्लास आगे था वो, यानी हम क्लास फेलो नहीं थे। फिर हमने, हमारे स्कूल में एक सरदार जी टीचर थे, उनका नाम था सोडी, और उनके यहाँ यहाँ दाढ़ी थी, ऐसे होता है। हम सारे लड़के उसको कुकड़ सोडी कह के छेड़ा करते थे। तो मैंने कहा आपको याद है हमारे स्कूल में कुकड़ सोडी था, कहता हाँ। फिर हमारे स्कूल का जो बैंड था वो फर्स्ट आया करता था सारे स्कूल में, तो मैंने कहा अब हमारा बैंड फर्स्ट आता था। उसने कहा ऐसे हो गया जैसे हम समझिए कि पुरानी यादों में खो गए और एकदम जैसे फ्रेंडली हो गए एक सेकेंड में। अब आप सोचिए ये कैसे हुआ, नॉर्मली तो नहीं है। अच्छा, फिर उसने मुझे पूछा कि क्या काम है। तो मैंने कह दिया मैं ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हूँ और 220 टन हमें सीमेंट चाहिए। 220 टन सोच के वो पहले तो हैरान हुआ, कहता आपने क्या बनाना है। तो फिर मैंने बताया कि हमारा हेडक्वार्टर है माउंट आबू में, वहाँ पर एक किचन कॉम्प्लेक्स है। वो किचन कॉम्प्लेक्स बड़ा छोटा था, तो हमने किचन कॉम्प्लेक्स को बड़े करना है क्योंकि आगे सेवाएं बढ़ रही हैं। और ख़ास बात ये थी कि उस पांडव भवन जो हमारा हेडक्वार्टर था उसके ऑपोजिट हमको ज़मीन मिली थी, पहाड़ी जैसी ज़मीन मिली थी। लेकिन भाई बहनों ने, दादी जी ने खुद उसमें लेवल करने में जितना खुद भाई बहन लेबर कर सकते हैं, पत्थर उठाए, लाइन बना के एक के दूसरा पत्थर पास करता था। वो जगह पर 2000 सीटिंग कैपेसिटी का ओम शांति भवन, बाद में नाम पड़ा, वो हॉल बनना था और उससे कनेक्टेड बाकी चीज़ें बननी थी। तो बाबा ने हमें कह रखा है, आपको पता है कि आप जो बनाओगे वो छोटा होता जाएगा, जो बनाओगे वो छोटा होता जाएगा। तो पांडे भवन जो हमारा हेडक्वार्टर था उसका एक हॉल था, आजकल उसको हिस्ट्री हॉल कहते हैं क्योंकि आजकल उसमें पिक्चर लगा दिए गए हैं पुराने, वहीं पर क्लास होती थी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा था कि जब जब हम गए थे ज्ञान में उस समय वो हॉल भी 1/2 पर भरता था केवल, धीरे धीरे वृद्धि हो गई। तो बाबा ने ज़मीन भी दिला दी बिल्कुल सामने और ये 2000 कैपेसिटी का हॉल बनना था, अब तो बन गया है। अगर इर्द गिर्द कुर्सियाँ लगाए तो 3000 का हॉल है। उस समय ऐसी इसी की आवश्यकता थी। उसके बाद तो आपको पता है नीचे शांति वन में 25,000 का हॉल है। लेकिन उस बाबा ने कहा था जितना आप करते जाओगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैंने उससे कहा कि भाई साहब एक बड़ा बड़ा हॉल बनना है, उसके साथ एलाइड फैसिलिटीज़ बननी है और ये है। तो कहता है जी उस समय जनता गवर्नमेंट का राज था, तो उसने कहा हमारे मिनिस्टर ने तो कह रखा है कि केवल मिलिट्री को, CPWD को, वो भी खास पुल वगैरह बनाते हैं, कलवर्ट्स बनाते हैं, इनको प्रायोरिटी देनी है, बाकी सबको जैसे गवर्नमेंट का असूल है उसके अनुसार करना। गवर्नमेंट का असूल क्या था, वो हर स्टेट में कोटा देते थे और राजस्थान गवर्नमेंट जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है उनका उस वक़्त ये था कि राशन कार्ड पर 3 महीने में 20 बोरी सीमेंट देना है, चाहे वो कोई भी हो, संस्था हो, कोई भी हो। तो हमको वो तो कुछ भी नहीं था, 20 बोरी का एक टन होता। अच्छा, तो मैंने बताया तो कहता है सोच में पड़ गया, कहता है ये तो, फिर बोला ठहरिए ठहरिए, संजय गांधी उस वक़्त थे, संजय गांधी जी ने अनंतपुर साहब का एक गुरुद्वारा है वहाँ, उसके लिए सीमेंट लिया था हमारी मिनिस्ट्री से, मैं उसके आधार पर कोशिश करता हूँ। अब आप सोचिए, इतना वो इंटरेस्टेड हो गया, इतना उसने कंसर्न दिखाया, ढूंढा, सोचा कि संजय गांधी जी तो गवर्नमेंट ही थे एक तरह से, उनकी सरकार थी। अच्छा, तो कहता मैं दूंगा। और अनंतपुर का गुरुद्वारा बहुत बड़ा बना, मशहूर गुरुद्वारा, उसमें बहुत बड़ी एक्सपेंशन की गई थी। अब जी बाद में उसने मुझे कहा करके ना, मिनिस्टर से सेंक्शन कराना होता है, खुद उसने नोट बनाया करके, सार ये है कि वो हमारा सीमेंट सेंक्शन हो गया 120 टन। फिर उसने मुझे बुलाया, 220 टन, अपने ऑफिस में बुलाया, बोला देखिए भाई जी ये सीमेंट जो है कई तरह का होता है, मैं आपको बेस्ट सीमेंट दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बेस्ट सीमेंट दीजिए। तो फिर उन्होंने हमें बताया, समझाया मुझे कि दो प्रकार का सीमेंट होता है, एक होता है APC और एक होता है PPC। मैंने कहा उसमें क्या फ़र्क होता है, कहता है जो APC होता है वो प्योर सीमेंट होता है, वो केवल हम कोई पुल बनाना हो, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला काम करना हो वहाँ देते हैं, और PPC में थोड़ा सा ना चूरा मिला होता है, जैसे कोयले वगैरह का कुछ परसेंटेज में, वो देर से सेट होता है, ये जल्दी सेट होता है, बाकी ज़्यादातर लोग वही लेते हैं पीपीसी। मैं आपको एपीसी देता हूँ, अब 220 टन एपीसी सीमेंट। फिर बोला कौन सी फैक्ट्री से दूँ, तो मैंने कहा भाई जी जो हमारे माउंट आबू के नज़दीक हो, तो वहाँ एक जेके सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई थी, उसके ऊपर उसने वो बना करके ऑर्डर बना करके उनको भी भेज दिया, हमें भी भेज दिया।
तो बस अब इतना ही, मतलब इजीली शॉर्ट टाइम में एक अनजान व्यक्ति को बाबा ने इतना फेमिलियर कर दिया। और शायद अगर विनोद जैन भाई करते तो शायद, क्योंकि ना वो अमृतसर के थे ना वो स्कूल के थे, तो शायद बाबा ने इसलिए आपको चूज़ किया क्योंकि बाबा को यहीं से शुरुआत करवानी थी।
क्योंकि बाबा को हम सब के जन्मपत्री पता है और यहाँ तक पता है इनका दोस्त कौन है, इनका क्लास फेलो कौन है। मुरलियों में बाबा कहता है ना कि मैं बीज हूँ सारे ट्री का, तो बीज को सब चीज़ का पता होता है। वैसे बाबा वर्णन नहीं करता लेकिन सारे ट्री के सीड को पता होता है ना, उसी का उसने यूज़ किया। जैसे पिछली स्टैम्प के केस में मेजर मोहिनी का यूज़ किया था, इस भाई को यानी मेरे शहर का मेरा एक क्लास फेलो और वो सीमेंट कंट्रोलर बना हुआ। अच्छा, इस तरह से दिलवाया।
क्योंकि वैसे आप तो बहुत लोगों से मिलते हैं, ऑफिसर्स से, पॉलिटिशियन से मिलते हैं, लेकिन ये एक यूनिक प्रकार की कॉन्वर्सेशन हुई जिससे शुरुआत हुई।
टचिंग तो बाबा ने की ना
जी,
वरना आप देखिए नॉर्मली कोई भी व्यक्ति किसी अनजान ऑफिसर से अपना काम करवाने के लिए फर्स्ट टाइम मिलने जाए, उसे कभी पूछेगा? वो जवाब देगा कि आप कौन से शहर के रहने वाले हैं, ये है ना बात
जी।
अच्छा, मान लो एक साउथ इंडियन से मिलता है, एक ऑफिसर भी साउथ इंडियन है, वो पूछ सकता है कि जी आप कहाँ के हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति तो नहीं पूछेगा। और वो जवाब दे, फिर स्कूल की बात और भी ज़्यादा। अच्छा, फिर उसने मुझे ये बताया कि भाई साहब एक सीमेंट तो हम कंट्रोल रेट पे देते हैं, वो सीमेंट तो सस्ता ही होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल के बगैर सीमेंट मिलता ही नहीं था। और ब्लैक के अंदर कई लोग लेके ब्लैक करते हैं, तो 20 रुपए बोरी उसका रेट था और 20 रुपए बोरी उस पर ब्लैक थी, यानी किसी ने लेना हो तो डबल रेट पे लेता था।
गवर्नमेंट से भी? गवर्नमेंट से भी या
नहीं, गवर्नमेंट थोड़ी ब्लैक करती है। कई लोग लेके ज़्यादा ले लिया, फिर आधा बेच दिया, जो लेने के लिए बेचने के लिए ले लिया, उसका मार्केट में लेना हो तो डबल रेट पर था। फिर उसने मुझे ये बताया कि मैं आपको, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करती, किसी भी फैक्ट्री पर अलॉट कर देती है, मैं आपको इसलिए जेके सीमेंट पर अलॉट कर रहा हूँ, एक तो आपके नज़दीक है, दूसरे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना उन्होंने कार्टल बनाया हुआ हर जगह पर जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है, उन्हीं से ही आपको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता और उनके वो तो फ्री हैं, आपस में उन्होंने यूनियन बनाया होता और उनका रेट वो डबल चार्ज करते हैं क्योंकि और कहीं चारा ही नहीं है, इसलिए मैं वहाँ दे रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसपोर्ट भी कम पड़ेगी। इस तरह से उसने हमें सीमेंट दिलवाया।
तो फाइनली हमको कौन सी क्वालिटी का सीमेंट मिला?
हमें एपीसी मिला,
जो बेस्ट क्वालिटी है
एपीसी का, और 220 टन, जबकि वो कह रहे थे कि हमें मिलिट्री को या CPW को जो पुल वगैरह बनाते हैं उसमें भी वो देख के देते थे PPC कितना देना, APC कितना देना, ज़्यादातर वो मिक्स करके देते थे इतना ये इतना ये, लेकिन उसके दिल में ऐसे हो गया जैसे उसका ही काम है और ख़ास तौर पे हमारा स्पिरिचुअल वर्क था, इसलिए उसने इस तरह से किया।
तो फिर भाई साहब इतना सारा जो हमें मिला, 220 टन सीमेंट मिला, ये हमने कहाँ यूज़ किया? सारा ओम शांति भवन में इसका यूज़ हो गया?
नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी, किचन कॉम्प्लेक्स हमारा बहुत छोटा था, उसको कम से कम मेरा ख्याल है 6 टाइम्स बड़ा किया गया, रीबिल्ड किया गया। अब जहाँ वो किचन था वहाँ किचन है ही नहीं, एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, और उसके अलावा जो है इसको उन्होंने ओम शांति भवन में, ओम शांति भवन भी 2-3 मंजिला है ना, हॉल तो बड़ा है लेकिन और जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, फिल्म दिखाना आदि आदि बहुत सारा होता है, साइड में उसके ग्रीन रूम्स होते हैं, VIP आता है उसके लिए स्थान होता है, जैल सिंह जी उसी में आए थे और कई लोग उसमें आए थे फर्स्ट टाइम, तो ये था।
तो भाई साहब जो इस समय इतना सहयोगी बने वो सीमेंट कंट्रोलर, तो उनको फिर बाद में बाबा का परिचय भी मिला, वो ज्ञान में चले या?
ऐसा है कि बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं सहयोगी आत्माएं होती हैं। दादी प्रकाशमणि जी को भी, जब दादी प्रकाशमणि जी दिल्ली आई थी, मैं उनके घर लेके गया था और दादी जी खुशी से गई क्योंकि इतना बड़ा काम उस भाई ने किया था। और ना सिर्फ उन्होंने ओम शांति भवन के लिए सीमेंट दिया था, बाद में भी हमारा दिल्ली का रजौरी गार्डन कितना बड़ा स्थान है
जी
जिसको बाबा ने कहा था कि स्वस्तिका के रूप में बनाओ, और वो दिल्ली के मेन रोड पर है, सबसे बड़ा मेरा ख्याल जगह दिल्ली में उसी की है। तो वहाँ भी सारा सीमेंट इन्होंने सप्लाई किया था, और उसके बाद श्री फोर्ट सेंटर बना जो दिल्ली के बेस्ट एरिया में है, वहाँ का भी सारा सीमेंट सप्लाई किया। श्री फोर्ट सेंटर बनते बनते सीमेंट डी कंट्रोल हो गया, तब उनका सीमेंट देना बंद हुआ क्योंकि सारा सीमेंट मार्केट में मिलने लगा। तो इतने वो स्नेही हो गए थे, तो दादी जी भी उनके घर गई थी। और जब आपने प्रश्न पूछा, तो उनको कोई भी कहता था कि माउंट आबू चलो, कहते थे देखिए मुझे तो प्लग से मतलब है, पावर हाउस कहीं भी हो, कहता है ब्रिजमोहन भाई मेरा प्लग है, मैं इससे मिलता हूँ, ये अच्छा काम कर रहा है, जो अपनी सेवाएं सुनाते रहता है, लेकिन बस मैं प्लग तक ही रखूँगा रहूँगा, बाकी दादी जी मिले, मतलब माउंट आबू भी नहीं हो गया, लेकिन वो इतना बाबा का काम इतना उसने कर दिया। फिर उसका शरीर छूटा, मैं उसके उस पर भी गया, वो अलग बात है।
तो इससे हमें कितनी सेविंग हुई भाई साहब, जो हमको डायरेक्टली मिला उससे हमारी यज्ञ की क्या सेविंग
आप
हुई?
देखिए, मैं एक बात और बता दूं, किसी का काम हो जाता है उसके बाद वो व्यक्ति उससे कनेक्शन नहीं रखता आज की दुनिया में, लेकिन भी बाद में भी सीमेंट का काम पूरा हो गया, डी कंट्रोल हो गया, बाद में भी हम उससे मिलते रहे। और क्यों मिलते रहे कि हमको ये ज्ञान है कि अगले कल फिर ये आत्मा सहयोगी बनेगी, और इसलिए उसके साथ भी तोड़ निभाना है, तभी वो अगले कल्प उसके अंदर वो संस्कार जागेंगे। हम तो जानेंगे तो कुछ नहीं, ना उसको पता ना हमको, लेकिन वो जो संस्कार बना हुआ है वो किस आधार से बना हुआ है, इसलिए नहीं कि हम स्कूल में पढ़े थे, उसको बाद में भी यज्ञ से कितना उसको स्नेह मिलता रहा, कनेक्शन रहा, उसका कनेक्शन होता है, ये चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर आज की रेट में देखें तो आज जो PPC है वो 365 रुपये का एक बैग आता है, और जो APC है वो 395 के करीब एक बैग आता है। अब आप देख लीजिए 220 टन है, 20 बैग का एक टन होता है, अब कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उस समय जो था, अगर उस समय का रेट देखें, उस समय पैसे की कीमत थी, अब 18 गुना कीमत है, 18 गुना रेट है सीमेंट का। उस समय 20 रुपये बोरी होती थी, 20 रुपये ब्लैक होता था। और जब मैंने ब्लैक और बोरी का नाम लिया, मुझे एक और घटना याद आती है। जब मैंने बाबा ने मुझे कहा था नौकरी करो, तो मैं 17 साल जॉब किया था। अच्छा, और जॉब के सिलसिले में मैं बीच में दिल्ली भी आता था, अपने घर भी आता था, तो जॉब मैंने फाइनली छोड़ दिया 17 साल बाद। तो क्या हुआ, यानी मैंने 57 में जॉब शुरू किया था, 70 में छोड़ दिया, और ये घटना जो है सीमेंट वाली, ये 82 के करीब की है, 1982। अच्छा, तो मैं जब जॉब छोड़ दिया तो बाबा की सेवा में पूरा लग गया। तो एक दिन दिल्ली में मैं स्कूटर पर किसी सेवा के लिए जा रहा था, और लाल बत्ती आई तो होम मिनिस्टर बूटा सिंह होते थे, वो कार में बिल्कुल आके मेरे पास खड़े हो गए, कार उनकी, गन मैन दोनों तरफ गन लेके खड़े थे, उनको हाई सिक्योरिटी थी, हम उनसे भी उनको भी जानते थे, वो माउंट आबू से ही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट से ही वो जीते थे इलेक्शन। अच्छा, तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया, देखो हम बाबा के बच्चे हैं और स्कूटर पर जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट का व्यक्ति है, ये कार ऐसे, ये नहीं, यद्यपि मेरे पास अपनी कार थी जो मैंने बेच दी थी, खुद बेच दी थी, वहाँ पर जहाँ मैं जॉब करता था वहीं मैंने कार ली थी, फिर मैंने सोचा बीके को कार क्या करनी है, तो ऐसे ख्याल आया। फिर दूसरा ख्याल ये आया, मैंने नौकरी छोड़ दी, अगर मैं इतने साल तक नौकरी करता रहता तो मेरे को कितने पैसे यज्ञ को मैं देता, यानी 72 से लेकर 82 तक 10 साल में। अच्छा, ख्याल आया, फिर बाबा ने अचानक मुझे ख्याल दिया कि तुमने जो सीमेंट लेके दिया था उसमें कितनी सेविंग हुई, अब वो तो तुम्हारी नौकरी की तनख्वाह से तो बहुत ज़्यादा, तो मुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि व्यक्ति का माइंड होता है ना, माइंड बड़ा डेलिकेट चीज़ है, कहीं भी पहुंच जाता है, तो मुझे उस वक़्त ये याद आया, अरे देखो उसकी सेविंग कितनी थी, तो ये जो तुमने नौकरी की इसमें कितना कर लेते, ये आया था।
तो हम भाई सब जो यज्ञ की इकोनॉमी करते हैं वो भी हमारे खाते में सेविंग के रूप से जमा हो जाती है।
हम अपने हमारा काम है बिल्कुल निष्पक्ष निष्काम भाव से, यज्ञ है ना, तो यज्ञ की आप अगर यज्ञ की महिमा गीता में पढ़े तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ, कोई पढ़े इस एंगल से तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए, कितना शानदार यज्ञ सेवा का महत्व है। तो उसमें हाँ, बाबा ने हमारे अंदर शुरू में डाल दिया था, क्योंकि हम साकार बाबा की पालना में रहे हैं, तो सेवा करते जाओ, जमा बाद का तो और बात है, उस वक़्त ही आपको जब कोई यज्ञ की सेवा आप करते हो इतनी ज़बरदस्त आपको खुशी होती है, आपके पांव धरती पर नहीं लगते, आगे का जमा तो नेचुरली होना ही है, लेकिन हम इस भाव से नहीं करते, बस यज्ञ की सेवा है, क्योंकि यज्ञ का जो भवन बना, हॉल तो दुनिया में बहुत हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, लेकिन यज्ञ का हॉल बनना अर्थात उसके अंदर जो लोग आएंगे उनका जीवन बदलेगा, तो वो कितने लोग आएंगे, हॉल एक बारी बन जाए, आज तक भी ओम शांति भवन है ना, आज तक भी वहाँ प्रोग्राम होते हैं, विदेशी लोग आए, कितना हज़ारों लोग आए, लाखों लोग आए, तो वो जो सेवा है ना, कि हमने तो खाली सीमेंट के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, वो भी खुद ही दिलवाया, उसमें हमें खुशी होती है कि बाबा अपने बच्चों को काम खुद करता है, करण करावन आ रहा है, और यश जो है बच्चों को दिलाता है। ये नॉर्मली हम किसी को मेंशन, ये तो सीरीज आपने बनाई है कि भाई इसमें बताओ भाई बहनों के इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, रोचक बात है, इसलिए हम बता रहे हैं।
तो भाई साहब उन उसकी तो सेवा हुई है उस आत्मा की जो उस समय सीमेंट कंट्रोलर था, कहीं ना कहीं अगले कल्प के लिए वो आत्मा द्वापर युग से उसके अंदर वो परमात्मा के प्रति प्यार के संस्कार भी आ गए, भक्ति वाले संस्कार भी उसमें आ गए। लेकिन जिस
देखिए वो वैसे नेक व्यक्ति था, मैंने उसको देखा, हम उसके घर भी जाते रहे, हम्बल घर था उसका, तो उसके पत्नी थी, दो बच्चे थे, उसका एक बच्चा वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए में किसी बैंक का। तो बात यह है कि नेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, और बाबा कहता है एक होते हैं योगी, जो बाबा के सरेंडर बच्चे, एक होते हैं सहयोगी। तो सहयोगी वो होते हैं जिनको पूरा ज्ञान तो नहीं मिलता, लेकिन उनको जो ज़रा सा भी भगवान के काम करता है, जैसे हमें बाबा कहता है तुम एक कदम उठाओ पदम गुना फायदा होता है, उनको भी होता है। नेचुरली सहयोगी आत्माएं जो हैं बहुत त्रेता के अंत में प्रजा बन जाएं और बात है, बाकी द्वापर से लेकर उनको उसका फल जरूर मिलता है। जैसे हम लोगों की आयु लंबी होती है, बीमारी नहीं आती, तो सारे फल सहयोगी आत्मा को भी मिलते हैं। उसने तो सीमेंट ही दिया, लेकिन उस सीमेंट से हॉल बना, तो हॉल से कितनों की सेवा हुई, तो उसका हिस्सा उसको जाएगा तो सही ना
जी। तो उनका नाम आपको याद है भाई साहब?
उसका नाम था श्याम सुंदर मिगलानी, एसएस मिगलानी।
और भाई साहब जिस फैक्ट्री से सीमेंट लिया, जरूर वहाँ पे भी वो भी अचंभे में होंगे कि इतना सारा सीमेंट एक ही जगह जा रहा है।
नहीं, फैक्ट्री वालों को तो बेचना होता है। एक बात और बता दूं, जब ये श्याम सुंदर मिगलानी सीमेंट कंट्रोलर से रिटायर हो गए तो जेके वालों ने इनको एडवाइजर रख लिया। हाँ, ये भी है, जेके की कई सीमेंट फैक्ट्री हैं, एक वहाँ है, तो जेके बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप है, लेकिन उन्होंने इसको इनको एडवाइज़र रख लिया, और मतलब उसके बाद उनको और भी ज़्यादा तनख्वाह, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह देना कोई बड़ी बात नहीं, उनको पता था कि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है और ये व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता। टिल हिज डेथ ही वॉज एडवाइजर टू जेके ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में है
जी।
हाँ जी,
बहुत बढ़िया। तो भाई साहब इसके बाद तो फिर सारा जो भी कार्य था कंस्ट्रक्शन का, बड़ा किचन का या ओम शांति भवन का, वो स्मूथली चला होगा या उसके बाद भी कोई विघ्न आए?
ऐसा है कि बाबा ने कह रखा है कि किसी भी काम में मैं तुम्हारी इस तरह मदद नहीं करूंगा कि मैं भगवान ने कर दिया, जैसे दुनिया में मान लो कोई दुनिया वाला करता है वैसे आपको करना पड़ेगा और दुनिया के लॉज को आपको ओबे करना है। बाबा ने हमें डायरेक्शन दी हुई है, ऐसे नहीं कि आप गॉडली पीपल हो तो अब दुनिया के लॉ को डिसओबे करो, हम तो भगवान के बंदे हैं, नहीं।
जी।
ये बाबा ने कहा लॉ ऑफ द लैंड को आपने पूरा ओबे करना, और इसीलिए आप देखें बहुत इसकी डीप इम्प्लीकेशन है कि ब्रह्मा कुमारी के जो बिजनेसमैन हैं वो धोखा नहीं करते, है ना? तो क्यों नहीं करते कि उनको लॉस है, हालांकि दुनिया के लोगों को गवर्नमेंट के लॉ तोड़ने में वो कोई फ़ायदा कमा लेते हैं, कोई रिश्वत ले लेता है, कोई दे देता है। अच्छा, जो आपने पूछा तो भाव उसका ये कि कोई भी काम होगा उसमें विघ्न जिस तरह का आना आएगा, और फिर हमें ये निश्चय होता है कि बाबा का काम है, बाबा इसको ठीक करेगा, ये
तो
भी
और
पता।
भी इसमें कोई विघ्न
हाँ, वो
आए?
मैं बता रहा हूँ। हुआ ये, ओम शांति भवन की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, अचानक अभी वो कंस्ट्रक्शन हाफ वे थी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ऑर्डर पास कर दिया। वो क्या था कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और राजस्थान का एक ही हिल स्टेशन है
जी।
और जगह तो स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट था। पहले एक्चुअली ये ग्रेटर बॉम्बे में होता था, फिर गुजरात बना, गुजरात और डिवीज़न ऑफ स्टेट्स हुआ, तो ये हिल जो था लास्ट सिटी है राजस्थान का, उसके बाद गुजरात शुरू हो, तो गवर्नमेंट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हिल स्टेशन राजस्थान गवर्नमेंट को दे दिया था। अब ये जो हिल स्टेशन था इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ बहुत कई चीज़ें, दिलवाला टेम्पल है, वर्ल्ड फेमस है, टूरिस्ट आते हैं, तो लोगों ने होटल बनाने शुरू कर दिए धड़ाधड़। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने सोचा ये तो इसकी इकोलॉजी बिगड़ जाएगी, हिल की बजाय कुछ और ही बन जाएगा, उन्होंने एक बैन कर दिया, ब्लैंकेट बैन, कि माउंट आबू पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, स्ट्रिक्टली लागू कर दिया, क्योंकि वहाँ कई लोगों ने कई प्रकार की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी
कमर्शलाइज करने के हिसाब से,
क्योंकि हिल स्टेशन था तो कमर्शियल तो था ही वो
जी।
अच्छा, तो वो बैन हमारे पर भी लागू हो गया, यद्यपि हमारी कंस्ट्रक्शन हाफ हो चुकी थी। लॉ इज लॉ, वो लॉ बनाने वाले ये तो नहीं सोचते ना कंस्ट्रक्शन बैन। अच्छा, अब दादी जी ने मुझे कहा इस कंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करवाना, तो गर्मियों के दिन थे बहुत, तो बनारसी भाई जो डॉक्टर हैं वो उनको मेरे साथ भेजा सिरोही में, क्योंकि सिरोही में ही कलेक्टर है सारे स्टेट का, और कलेक्टर ने इस बैन को ऑर्डर किया था, तो हम चले गए कलेक्टर ऑफ सिरोही। तो मेरी आदत है कि मैं किसी भी आदत का मेरा असूल है कि मैं किसी भी ऑफिसर से मिलने बिना ब्रह्मा कुमारियों के नहीं जाता। पहली बात कि बाबा ने रखा हुआ है कलश माताओं के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर, इसलिए मैं नहीं जाता बगैर जाता। दूसरे, बाबा ने कुछ सोच के ही रखा, मैं ब्रह्मा कुमारी तो नहीं हूँ ना, ब्रह्मा कुमार हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है ब्रह्मा कुमारी, तो हम जाते हैं तो दूसरा भी सोचता है। तो मैंने सिरोही की सिस्टर इंचार्ज थी शारदा बहन, उनको साथ ले लिया, तो हम गए। तो कलेक्टर साहब ने हमें देखा, बात की मैंने, मैं माउंट आबू वहाँ से आया हूँ, बोले सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आपके कितने सेंटर हैं? अब मुझे तो पता नहीं, तो शारदा बहन थी, मैंने कहा देखिए ये बहन जी यहाँ की इंचार्ज हैं, ये आपको बताएंगे। उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कस्बों में भी हैं, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े शहरों में, उन्होंने सेंटर बताया। माउंट आबू भी सिरोही में पड़ता, अच्छा, फिर उन्होंने मुझे कहा, बोले कि आपकी संस्था गरीबों की क्या सेवा करती, इतनी बड़ी संस्था है आपकी, गरीबों की क्या सेवा करती है? तो मैंने कहा जी के बड़ी तो है, सारे इंडिया में इसके सेंटर हैं, लेकिन बड़ी गरीबों की क्या सेवा करती है? अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला, मैंने कहा ये रुमाल है ना, 5 रुपए का तो होगा उन दिनों में, मैंने कहा हिंदुस्तान में कितने गरीब हैं बताइए। अच्छा, 40 करोड़ तो होंगे, अगर हम उनको वन टाइम रुमाल दें 40 करोड़ को, तो कितना हो गया, 200 करोड़ हो गया, और एक टाइम उनको रुमाल मिलेगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। आपके ख्याल में क्या ब्रह्मा कुमारी के पास 200 करोड़ है? उसको मैंने कहा, मैंने कहा हम गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं क्योंकि आप कलेक्टर हैं। मैंने कहा देखिए, जो अमीर लोग हैं जिनके पास धन है, हैव्स हैं, ये गरीब लोग हैव नॉट्स हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि लोभ ना करो और तुम जो है अपने आत्मा के लिए जियो, ना कि बॉडी के लिए और लग्जरी के लिए। तो उस हिसाब से हम गरीबों को हेल्प करते हैं कि अमीर जो हैं उनको ट्रांसफ़र करें पैसा, अपना धन उनको भी शेयर करें। ये बड़ी डीप बात है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 200 करोड़ क्या चीज़ है, कितने अमीर हैं जो हमारी संस्था में आते हैं और आगे भी आएंगे। अच्छा, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसने कहा मेरी पत्नी दिल्ली में कॉलेज में पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा अच्छी बात है, थोड़ा अपने आप बोल के फ्रेंडली हुआ थोड़ा
जी।
अच्छा, फिर मैंने उसको, भाई को, मैंने कहा आप हमें तो कह रहे हैं कि आप गरीबों के लिए क्या करते हैं, आप तो गवर्नमेंट हैं। तो मैंने कहा कि आपका नाम कलेक्टर क्यों है, डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं है? जोर से हंसा।
सही बात है वैसे।
नॉर्मली व्यक्ति नहीं कहता, पर जब उस थोड़ा बोला ना मेरी पत्नी भी दिल्ली में है आदि आदि, तो मैंने कहा एक मैं बात कहता हूँ, आपका नाम कलेक्टर क्यों है, तो क्या इकट्ठा ही करते हैं ना, आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना, आप हमें कह रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर हो? तो बहुत ज़ोर से हंसा। खैर, हमने कहा देखिए मेन बात यह है कि हमारी कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है, ये बैन जो है आपका ये नई कंस्ट्रक्शन के लिए तो है, चलो किसी ने जरा सी दीवार बनाई है उसको भी रोक सकते हैं, हमारा तो ह्यूज प्रोजेक्ट है और इसमें आधा बन चुका है, तो आप प्लीज़ इसको सेंक्शन कर दीजिए। तो उसने लिख दिया कि क्योंकि इनका काफ़ी बन चुका है इसलिए इन पर ये बैन लागू नहीं होता। इस प्रकार से समझिए कि ये काम हुआ, इसमें भी बाबा ने मदद की।
तो बाबा की मदद उस आत्मा को भी टच कराया और ज्ञान की शक्ति बाबा ने उस आप में भरी है, और उस समय वही बात उसको कहना जो उसको टच हो जाए।
एक तो क्या है कि उसके प्रश्नों के उत्तर वो जानना चाहता था सरोई में, क्योंकि वहाँ का कलेक्टर था, कि ब्रह्मा कुमारी क्या कर रहे हैं। दूसरा उसका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गरीबी जो है, इतनी बड़ी संस्था है आपकी, क्योंकि ये लोग ये अप्रिशिएट नहीं दुनिया वाले करते कि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसी से चंदा भी नहीं लेती, और अपने ही जो मेंबर्स हैं वो इसमें, उनको पता है कि बड़ा अच्छा काम है, वो अपनी बुरी आदतें या फालतू खर्चा, फजूल खर्ची, ऑस्टेंसेशन को दूर करके वो लोग अपना ज़रा ज़रा पैसा जोड़ के इस संस्था को चलाते हैं। और क्योंकि हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर में सारे सेंटर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, हेडक्वार्टर तो कमाई नहीं करता ना, और हेडक्वार्टर सर्विसेज देता है, वहाँ से टीचर्स भेजता है, सेल्वेशन देता है, तो वो उसको नहीं समझते। एक पूल बड़े अमाउंट, बड़ी संस्था के बड़े बजट को देखकर वो सोचते हैं कि यह है। फिर वो गरीब किसको कहते हैं और गरीबी क्या होती है? ब्रह्मा कुमारी तो कहती हैं करेक्टर की गरीबी गरीबी है। अगर आप किसी व्यक्ति को चैतन्य सुचेत कर दें, जैसे हम लोग हैं, कभी सादगी से रहना, तुमको ये बाहर की चीज़ें, तुम हीरे पहन लो, बड़े बड़े कपड़े, इससे तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है, केवल तुमको आत्मा को एलिवेट करना है, तो आत्मा की हम पढ़ाई करवाते हैं जिसमें आपको सिंप्लिसिटी, फर्स्ट सिंप्लिसिटी जो है एक सादगी और एक स्वच्छता है ना, और एक सच्चाई। तो स्वच्छता कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो हम लोग सादा भी रहते हैं, स्वच्छ भी रहते हैं, वो चीज़ें और समाज को सिखाते हैं। अब जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे लाखों की संख्या में इसको फॉलो करते हैं, तो वो इतनी डीप सेवा है ये। लोग मोटे रूप से देखते हैं इनके पास लाखों रुपया होगा, क्यों ना इनसे गरीबों के लिए ले रहे। कई बार ऐसे होता आते हैं वो।
तो जब भाई साहब उन्होंने उस चीज़ को अप्रूव कर दिया और फिर से शुरू हो गया, तो जिन लोगों का बैन किया था उन्होंने कोई ऑपोजिशन नहीं किया?
नहीं, हमें नहीं पता एक्चुअली, वी हैव नो नॉलेज, क्योंकि हमारा तो कंस्ट्रक्टेड था ना, है ना। मुझे ये पता भी नहीं है कि किसी ने क्या किया होगा। हमारा अपोजिशन तो नहीं करेंगे, वो यही करेंगे ना कि अपने लिए भी सेंक्शन करवा लें। आमतौर पे लोग यही करते हैं कि उनका किया है हमारा भी कर दो, लेकिन वो बैन हमारी तो हो चुका था ना, अपोजिशन क्यों करेंगे। वो ये कहेंगे हमारा भी कर दीजिए, और वो कहेंगे नहीं इनका अलग से केस है, तुम्हारा अलग है। और लोगों को अंदर से, क्योंकि ये सेवा वाली संस्था है ना, स्पिरिचुअल है, अंदर से हमदर्दी भी होती है, ये भी एक फैक्टर है। अंदर से वो सोचते हैं किसी और का काम करें ना करें, अंदर से वो सोचते हैं पुण्य हो जाएगा, वो फैक्टर भी काम करता है।
और कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी सुख लिया है सेवाओं का, बाबा से सुख लिया है, तो वो भी चाहेंगे कि ये चीज़ और आगे बढ़े।
नहीं, कई बार ये ऐसे हो जाते हैं, जो ऑफिसर होता लोकल, ये तो कलेक्टर्स तो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है ना, हर 3 साल बाद चेंज कर देती है, ताकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो जाए। गवर्नमेंट का काम है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स को रोटेट करती है, सेवा भी होती रहे लेकिन वो व्यक्ति वहाँ फंस ना जाए, इसलिए वो करती है, वो उनका लॉ अच्छा है। लेकिन जो कई बार ऐसे ऑफिसर कुर्सी पर मिल जाते हैं जिन्होंने बाबा की कोई ना कोई सेवा ली होती, इस कलेक्टर ने तो नहीं ली हुई थी, लेकिन ऐसे ऑफिसर मिल जाते हैं। एक बार मैं USA गया था टेम्पा में, तो मैं वापस आ रहा था, तो जो एयरलाइन की जो होती है ना डेस्क का ऑफिसर जिससे हम टिकट लेते हैं, वो नीग्रो थी, और मुझे बोली यू राजयोगा, क्योंकि मेरा बैज लगा था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हाउ डू यू नो राजयोगा? कहती आई वेंट देयर फॉर 7 डेज। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? कहती उसके बाद भी जाना होता है, उसको पता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, फौरन मेरा इकोनॉमी क्लास की टिकट था उसको बिजनेस क्लास कर दिया, और मेरा लगेज उसको कहा जाके प्लेन तक छोड़ के आओ। अब ये राजयोगा की सेवाओं के फायदे, अनेक ऐसी घटनाएं हैं।
तो ज़रूर भाई साहब, जैसे आपने बताया वो मिगलानी जी थे या ये कलेक्टर थे, तो अब जब ये जहाँ भी नेक्स्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाबा की सेवा का बीज पड़ गया है, तो वो वहाँ पे फलीभूत ज़रूर होगा।
ये ज़रूर है, बहुत इनडायरेक्ट है। कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ के किसी भी काम में किसी प्रकार से सहयोगी हो जाए तो उसको ज़रूर लाभ होता, ऐसा है।
तो आपको भाई साहब इस पूरे किस्से में बाप दादा की मदद जगह जगह पे है, लेकिन और थोड़ा सा अगर आप बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि हमको बाबा मदद कर रहे होते हैं पर हम उस मदद को अप्रिशिएट नहीं करते कि ये बाबा ने कराया।
हाँ, ये भी है। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा पाटिल माउंट आबू में बाबा से मिल रही थी और वापस जाने लगी थी, तो अनाउंस हो गया था शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको हम बता दें, जो आप कहते हैं कि नहीं तो ऐसा होता है। बाकी जो आपने कहा ये हमारे ऊपर है कि जो बीकेज हैं, हमें पता, हमें तो सॉलिड पता ही है, बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है करन करावन हार, करने वाले हम हैं करवाने वाला बाप है, हम निमित हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, निमित मैंने इंस्ट्रूमेंट भी हैं। ब्रह्मा बाबा ने इसका रूप का मॉडल दिखाया, अच्छा दादियों ने दिखाया, आज के ज़माने में हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, अब दुनिया के सारे स्टैंडर्ड्स को जानते हैं, उसी दुनिया में रहते हुए उसी दुनिया के नियमों को पालन करते हुए, विदेश में हमारे जितने सेंटर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग उनके रूल्स हैं, अब रशिया के और रूल्स हैं, यूगोस्लाविया के और रूल्स हैं, चाइना के और रूल्स हैं, लेकिन हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल जो है फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, हमारे कॉमन भी है, हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया हुआ, वो भी दुनिया में यूनिक है, कोई ऐसी संस्था ने आज तक नहीं बनाया कि 150 देशों में सेंटर हो, लेकिन कॉमन में कोड को भी फॉलो करें। हमने पूछा था कि दुनिया में कोई ऐसा है किसी संस्था जिसने सारे भिन्न भिन्न हेटरोजीनियस देशों को मिला करके एक कॉमन कोड बनाया हो, कहते नहीं है। फिर उसमें हमने फर्स्ट रूल यही लिखा हुआ, अपने अपने देश के नियम को अपने फॉलो करना है, और आपके देश के नियम के विरुद्ध अगर कोई हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग में उसको नहीं फॉलो करना, तब ये चलता है ना, क्योंकि हमें फेथ है कि भगवान का काम है। इंसान मनुष्य कॉमन थे, सारा ब्रदरहुड था, आज है नहीं। आज आप देखिए कितने टुकड़े हो गए, एक देश से दूसरे में जाने को आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीसा लेना पड़ता है, चेकिंग करवानी पड़ती, कई कुछ होता यह है। तो ये भगवान की दया है ना, इसलिए परमात्मा को परमात्मा कहते हैं। और वो हेल्प कैसे करता है, वो हर एक की जन्म पत्री को, हर एक सिचुएशन को एक तो जानता है, दूसरी बात यह कि रिपीट हो रहा है, ये अनेक बार ये रोल हमारा रिपीट हुआ है, हमें भी बताता है। जब हमें बताता है हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हम कर रहे हैं ये जो है नई बात नहीं है, ये तो बहुत बारी हुआ है और पक्का हुआ है, तभी तो हम उसके घूम कर यहाँ बैठे हैं। तो फिक्स ड्रामा को हम रिपीट कर रहे हैं।
और ये भी खुशी होती होगी भाई साहब कि अगली बार भी, अगले कल्प में भी, हर कल्प में बाबा हमसे ये सेवा करवाएंगे।
वो हमारे ध्यान में इतना आता नहीं है, पास्ट का ज़रूर आता कि पिछले कल्प करवाई होगी और उसमें ये ऑब्स्टिकल आया होगा, तो ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि सक्सेस तो बाद में मिलती है ना
जी।
तो सक्सेस के वक्त तो भूल जाते हैं हम क्या क्या हुआ था।
तो भाई साहब इस पूरी चीज़ से मैंने जो अपने लिए सीखा कि कई बार हमारे मन में आता है ये सेवा तो मैं कर रही थी ना तो इसको क्यों दे दिया, कई हमारे बाबा के बच्चे हैं जो ये कई बार होता है उनको, तो बाबा को पता है कि ये सेवा किस आत्मा से कैसे करानी है।
आप देखिए ना, किसको क्यों दे दिया, आज की ही जो हमारी हमने किस्सा सुनाया है, आपने खुद कहा कि विनोद जैन भाई शायद इसको ना कर पाता क्योंकि उसके तो सीमेंट कंट्रोलर जानता नहीं था, तो ड्रामा ने या बाबा ने कहो उसको और जगह जॉब लगवा दी, उसका अपना ट्रैक है, अब मुझे उसमें कहा कि तुम ये करो। अच्छा ये तो ड्रामा में हुआ, वो खुशी खुशी चला गया क्योंकि उसको जॉब थी, अमेरिका में लग गई। अच्छा और मैं, बाबा ने कहा मुझे एक चांस मिल गया सेवा का, अगर जो आपने कहा अब ये कई ये कहते हैं कि मेरा काम उसको क्यों दे दिया, मैं कर रहा था, वो होता वही सीन वही है कि मेरा काम उसको क्यों दे दिया, विनोद जैन का काम मुझे मिल गया, लेकिन हमने क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी ना, उसने कहा उसको क्यों दे दिया, मैंने कहा उससे क्यों छीन लिया। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है, कोई सीनियर निमित बड़ा कहता है कि तुम इस सेंटर से उस सेंटर में चले जाओ, तो उस वक़्त वो ओवरऑल ये ड्रामा को भूल जाते हैं कि खेल है, वहाँ जाके शायद मेरी उन्नति होगी, और बाबा ने कह रखा है कि जो हो रहा है अच्छा आगे होगा उससे भी अच्छा, तो उसमें भी कल्याण है। जब मुझे उस वक़्त लगेगा कि सेट किए हुए सेंटर से मुझे एक नई जगह भेज दिया, लेकिन अब नई जगह में अब नया सेट करेंगे तो आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, जो ऑलरेडी सेट है उसमें आपको क्या रिवार्ड मिलेगा, सेट हो चुका अब आप बैठे हैं वहाँ पर। लेकिन उस वक्त बुद्धि में कईयों के नहीं आता, इसकी डेप्थ नहीं आती, वो भूल जाते हैं ये भगवान का काम है, और वो भूल जाते हैं भगवान ने हमें कितना हाई अपॉर्चुनिटी दी हुई है, भगवान का काम कोई झाड़ू भी लगा लेता है मंदिर में कितना खुश होता
जी।
बड़े बड़े लोग मंदिर के बाहर बैठे जूते साफ कर रहे होते हैं
जी।
तो वो भावना से करते हैं, भक्ति से, हमें तो ज्ञान से बताया हुआ, इसलिए ऐसा सोचना वाले बेचारों का पार्ट ही ऐसा, अगर आप उनको ये बात समझाएंगे शायद उनकी समझ में ना आए, तो भगवान रोज़ समझाता है तो समझ में नहीं आती तो हमारे समझाने से क्या होगा। समझना चाहिए कि राजधानी में हर तरह के लोग होते हैं, ऑल कैन नॉट बी अलाइक, और हर एक का रोल स्पेशल होता है, अगर उसका रोल ये अप्रिशिएट कर लेना मेरा रोल स्पेशल है। मान लीजिए बहुत बड़ी मशीनरी है, मैं उसका एक स्क्रू हूँ, ठीक है, अच्छा, मैं कहूँ हाय मैं तो स्क्रू हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर स्क्रू टाइट ना रहे, लूज हो जाए, सारी मशीनरी खड़ी हो जाती है।
जी
इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कभी नहीं कि भी मेरा रोल बहुत बढ़िया है, नहीं, मेरा रोल मेरे लिए बेस्ट है। अगर मुझे दूसरे रोल में डाल दोगे तो काम नहीं चलेगा। कई ये कहते हैं ना, हम बहुत देर से ज्ञान में आए, हे भगवान पहले क्यों नहीं बुला लिया। भगवान कहता हो सकता है पहले बुलाता तुम छोड़ के ही भाग जाते,
भागंती
है
हो
ना।
जाते।
अब सारा सेट है, अब तो हर एक को तसल्ली है, बड़ी संस्था है, सच होगा, सारे लोग थोड़ी झूठ बोल रहे हैं कि ये भगवान का काम है। अगर दो चार होते थे वो कहते थे तो झूठ लगता था उनको। तो इसलिए आपका समय ऐसा था, इस वक्त आप आए हो तो आप टिके हुए हो, पहले आप आते पता नहीं आपके साथ क्या होता। इसलिए समय, मेरी परिस्थिति और मेरा रोल मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, यही मेरे लिए बेस्ट है। बस हमारे को तो फेलियर होता तो नहीं, अगर कहीं फेलियर भी हो जाए हम समझते हैं इससे आगे ज़रूर अच्छा है। पहली बार हमारी संस्था में BD जत्ती वाइस प्रेसिडेंट आए थे दिल्ली के प्रोग्राम में, विज्ञान भवन में। BD जत्ती यहाँ ही रहते थे, हम उनसे अनेक बार मिले, हर बार वो हाँ करते करते ना कर देते। उनका एक PA था, जब उनके पीछे आके खड़ा हो जाता था फटाफट वो ना कर देता, और मेरे से उनका एक फ्रेंडली चैट हुआ करता था। वो खद्दर पहनते थे, मैं सूट बूट पहनता था, तो मुझे कहते थे ब्रह्मा कुमार तू खद्दर ये सादा ड्रेस क्यों नहीं पहनता। फिर बताते थे कि मैं वकील था, मेरे को कोर्ट में कहा कि तुम वकील की ड्रेस पहन के आओ, मैंने नहीं तो तुम्हारा सनद यानी लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा कर दो, मैं नहीं ड्रेस चेंज करूँगा। कहता है कि उन्होंने मेरे को कैंसिल नहीं किया, तुम क्यों नहीं। तो मैंने कहा देखिए, आज की दुनिया में किसी के घर भी जाना हो मिलने, अगर आप खद्दर पहन के जाओ और बात है, अगर आप सिंपल ड्रेस में जाओगे आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। दिस ड्रेस इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ, दिस ड्रेस इज़ फॉर अदर्स। जैसे कहते हैं ना, खावे मन पौंदा पावे जग पौंदा। तो मैंने उसको बताया तो हंसता था, मतलब इस तरह का था।
जी
तो ये है, वो 3 बारी 4 बारी ना कर चुके थे, हम सोचते थे इतनी ना का हमारा काम है करते रहना। जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें वो आए विज्ञान भवन में, साथ में उनका घर था वाइस प्रेसिडेंट हाउस। तो इसलिए जो हम सोचते हैं ना फेलियर है, नहीं, उसमें कल्याण है।
वैसे अब आपके जो आपने लास्ट टाइम किस्सा सुनाया था स्टैम्प का और इस बार भी, तो ये समझ में आता है कि बाबा को हमेशा हमें अवेलेबल करना है। बाबा अगर हमें हाँ कहते हैं तो हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है। और एक बार की फेलियर से पीछे नहीं हटना, रुकना नहीं है, वो समय शायद ठीक नहीं था, आगे फिर ट्राई करते रहना है।
यानी बाबा की टचिंग को हमें कम से कम अंदर आने तो देना चाहिए।
जी
हैं, किसी का फ़ोन एंगेज है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी फ़ोन कर रहा है, उस वो अंदर नहीं आ सकता। तो हमें फ्री रखना चाहिए। एक मेरी मनमत है वो लिमिटेड है, एक दूसरों की राय है वो भी लिमिटेड है, एक श्रेष्ठ मत है गॉड की, उसको एंट्री कर होने दें, और हम अपनी मनमत से उसको टेस्ट करने की कोशिश ना करें कि भगवान का कहा हुआ ठीक है या गलत है। इसको फेथ कहते हैं।
थैंक यू भाई साहब, आपने हमें इतना एक और परमात्मा की मदद का वो यादें ताज़ा करवाईं। हम तो उस समय पे नहीं थे, लेकिन आपके अनुभवों से हम भी परमात्मा की उस मदद को, जो शायद बाबा आज भी हमें दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा, हमें उसको आने देना है। हमें अपने मन के कपाट खोल के रखने हैं, अपनी बुद्धि को निर्माण रखना है, ताकि बाबा की मदद को मैं अपना अहंकार ना समझ लूँ और बाबा की मदद को हमेशा रिसीव करती रहूँ। तो ऐसे ही बाप दादा की मदद की कुछ और मीठी यादें लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे, और आप इस कार्यक्रम से हर थर्सडे जुड़े रहें। आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में हर थर्सडे आकर के ऐसी ही कुछ यादें तरोताज़ा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, ओम
ओम शांति।
शांति।